ओम शांति। सबने स्वर का साक्षात्कार किया भी? गीत में क्या था? स्वर का साक्षात्कार था। और बाबा ने आज कौन सा साक्षात्कार कराया? आई थी ना साक्षात्कार की वो सारी बातें। धोबी गए था, हमें स्वयं का साक्षात्कार कराया था। अजामिल जैसे पापी बन गए थे। तो आज सारी मुरली जो है चार पांच विषयों के ऊपर आधारित है। मुख्य तो धोबी घाट, बाबा सबसे बड़ा धोबी है, सुप्रीम वाशरमैन, सुप्रीम धोबी। वो हम सब आत्माओं की धुलाई करने के लिए आया हुआ है। कौन से बच्चे अच्छे बच्चे हैं? अच्छे बच्चे क्या करते हैं? एक प्रश्न था बीच में, अच्छे बच्चे क्या करते हैं? ज्ञान देंगे और सबको। सबसे पहले किसको देंगे? सबसे पहले अपने को देंगे। और क्या बोला बाबा ने आज? सबसे अच्छे बच्चे वो हैं जो श्रीमत पर चलेंगे, स्वच्छ होंगे। हाँ, तो दूसरों को आप समान बनाएंगे। और ये भी सब बातें ठीक हैं। पुरुषार्थी बच्चे कर्मों की गुह गति थी, लेकिन मुरली में एक सेंटेंस था, जो अच्छे बच्चे हैं वो रात को जाग कर भी आत्मा को धोते हैं। बराबर है? तो रात को जाग कर भी आत्मा को धोते हैं जो अच्छे बच्चे हैं, वो झट प्रैक्टिस में लग जाएंगे। तो आज बाबा ने धोबी घाट के संदर्भ में जो चर्चा की कि आत्मा के ऊपर अनेक जन्मों की कट चढ़ी हुई है, इतनी मैली हो गई है, साफ करने में कितने साल लगते हैं। ये धोबी घाट 5000 वर्ष पहले खुला था, लेकिन केवल संगम पर 100 साल के लिए खुलता है, बाकी इसमें तो बंद ही रहता है। तो धोबी घाट में कौन कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ती है? अगर हमको धोबी घाट अच्छी तरह से चलाना हो तो कौन सी सामग्री की जरूरत पड़ेगी? एक तो साबुन की, लक्ष्य सोप, और पानी। और पानी भी कौन सा? मैला की साफ पानी, साफ पानी। और एक तो साबुन की आवश्यकता, पानी की, साफ पानी, और ब्रश। हाँ, ब्रश की आवश्यकता पड़ेगी। और हैं ब्लीचिंग पाउडर, हाँ, ओलिसा पोल, और सटका मारने के लिए एक सोटी चाहिए, ज्ञान की सोटी, आज बाबा ने कहा ना। और स्थान भी तो चाहिए, पहले तो सबसे पहले स्थान चाहिए, और फिर कपड़े भी तो चाहिए। कपड़े में तो क्या करेंगे? मैले कपड़े। तो ये सब चीजें जरूरत होती हैं। तो बाबा ने कहा आत्मा बिल्कुल मैली हो गई है, तो इस मैली आत्मा को स्वच्छ करने के लिए तो बाबा ने हम सबको लक्ष्य सौंप दिया है ना। लक्ष्य सौंप अर्थात क्या? हमारे सामने लक्ष्य निर्धारित किया है ना। और लक्ष्य सौंप अर्थात क्या था मुगली में? हाँ, और क्या था बाबा? लक्ष्य सौंप अर्थात एक बाप की याद से आत्मा को स्वच्छ करना, साफ करना। हाँ, तो देवी देवता बनेंगे, लेकिन देवता तो बाद में बनेंगे, वो तो बाद की बात है। अभी क्या बनने का है? अभी ब्राह्मण बन, संपूर्ण ब्राह्मण। जो भी बाबा ने विभिन्न स्थितियां हम सबको दी हैं, उन स्थितियों के अनुभवी मूर्त बनना है ना। जो अंतिम सेवा के लिए बाबा हम सब बच्चों को तैयार कर रहे हैं, वो हमारी स्थिति से होगी, ज्ञान से नहीं, अंत में होगी। तो अनेक प्रकार की जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों को प्राप्त करने के लिए हमें सूक्ष्म अति सूक्ष्म पुरुषार्थ करना होगा। कल बाबा ने कहा ना, ये ज्ञान बड़ा बाप तुम्हें पेचीदा, पेचदार और सूक्ष्म महीन ज्ञान देते हैं। तो बहुत सारी महीन और पेचदार बातें हैं जिन्हें हमें अप्लाई करना है। जैसे आज की मुरली में एक चीज थी वरदान में, निर्लेप अवस्था। तो आत्मा तो निर्लेप नहीं है, लेकिन आत्मा निर्लेप अवस्था की अनुभूति करे। अगर हम उस अनुभूति में रहते हैं तो विकर्मों से बच जाते हैं और आत्मा उस अवस्था में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेगी। तो उस निर्लेप अवस्था को अनुभव करने के लिए या उसके अनुभव में, अनुभूति में समाये रहने के लिए कौन कौन सी चीजों को हमको ध्यान में रखना होगा ताकि उस अवस्था तक हम तीव्र गति से पहुंच सकें, प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए बाबा ने कुछ तो दो चार बातें वरदान में बताई थी, उसके अलावा भी चिंतन करेंगे। एक बात बताई थी, कौन सी? साक्षी भाव। क्योंकि जब हम साक्षी भाव की अवस्था में बैठते हैं तो साक्षी भाव मन को अप्रभावित अवस्था में ले आता है। किसी के चाहे कोई खराब कर्म कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है, बुरा कर्म कर रहा है, लेकिन उससे हमारा कोई संबंध नहीं रहता। उस समय आत्मा जैसे साक्षी होकर देख रही है ना? जैसे हम दूसरे को साक्षी होकर देखते हैं, ऐसे अपने आप को साक्षी होकर देखना है। उस अवस्था में आत्मा एकदम डिटैच रहेगी, न्यारी प्यारी अवस्था रहेगी, बॉडी से डिटैच। बाबा ने कहा देह और देह की दुनिया, देह के संबंध वरदान में था, उनसे न्यारा, ये एक साक्षी अवस्था है। तो उस अवस्था में अगर रहते हैं तो आत्मा निर्लेप अवस्था का अनुभव करती है। इसके अलावा जब जब हम सोमान में स्थित रहते हैं, आत्म जागृति, सेल्फ रेस्पेक्ट, जब आत्मा अपने सोमान में स्थित हो जाती है तो भी ये देह की दुनिया, देह के संबंध, देह का संसार भूल जाता है। आत्मा उसी चिंतन में खो जाती है, उस सोमान में स्थित हो जाती है। जैसे संसार में कोई छोटे मोटे पद पर है लेकिन अचानक उसकी प्रमोशन हो जाती है, आगे बढ़ जाता है, तो फिर उसके भी जो ध्यान है ना उसी की तरफ चलता है, उसके लक्षण भी वैसे हो जाते हैं। उसी तरह जब हम आत्माएं अपने सोमान में स्थित होते हैं तो बहुत सारी छोटी मोटी बातों से अपने आप ही आत्मा उठ जाती है ऊपर, वो उसको अच्छी नहीं लगती फिर, क्योंकि वो अपने स्टेटस, जो नीचे वाला स्टेटस है उससे ऊपर उठ चुकी हुई है। तो सोमान में रहने से भी हम निर्लेप अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। और तीसरी बात, स्वदेश, स्वधाम, स्वदेश अर्थात स्वधाम। जितना समय हम अपने घर में रहते हैं परम धाम में, तो भी देह की दुनिया, देह के संबंधी सारे भूले हुए होते हैं, तो भी आत्मा वहां परम शांति का अनुभव करती है, एकदम डीप साइलेंस, एकदम गहरी शांति। जो बाबा ने कहा था कि जब सवेरे का समय होता तो सन्नाटा हो जाता है ना, तो वो वाली अनुभूति होती है जब हम अपने घर को। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे याद कहाँ करना है, ऊपर परम धाम में याद करना है, अपने घर में याद करना है। तो लंबे समय तक हम जब भी याद में बैठते हैं या चलते फिरते भी, तो आंखों के सामने हमें अपना घर घूमता रहना चाहिए कि हम आत्मा परम धाम से आए हैं, वो ही हमारा असली घर है। ये तो हम टेम्परेरी इस मकान में ठहरे हुए हैं कुछ समय तक, जैसे इस हॉल में हम अभी थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, है ना? उसी तरह आत्मा भी इस मकान में थोड़ी देर के लिए बैठी है, परमानेंट हमारा घर ऊपर ही है। जैसे हम क्लास के बाद थोड़ा सा ध्यान तो होता है ना कि यहाँ के बाद हम जाके सो जाएंगे, है ना? सो जाने के बाद क्या होता है, बड़ी शांति मिलेगी, सारे दिन के काम धंधे से पूरे हुए तो एकदम शांति जैसे खींच रही है अभी भी, भले हम इधर बैठे हैं, लेकिन सूक्ष्म में विचार तो बुद्धि में है ना कि हमें क्लास करने के बाद सो जाना जाके। तो शांति जो है, भले वो नींद की शांति है लेकिन वो भी आत्मा को खींच रही है अभी। ऐसे ही जब हम अपने घर को याद करेंगे, जो शांति धाम, तो आत्मा उस घर की स्मृति में रहकर उस शांति की अनुभूति इस मकान में रहकर कर सकती है, है ना? जैसे कोई भी व्यक्ति यात्रा पर निकलता है तो अपने घर से लेकर जहां तक उसको यात्रा करनी होती है, जब यात्रा पूरी हो जाती है तो उसका ध्यान कहां जाता है, घर में जाता है ना। उसी तरह से हम सब आत्माओं का भी यात्रा भी पूरी हो चुकी है। बाबा अनेक बार कहते हैं कि अब ये ड्रामा पूरा हुआ है, घर वापस चलने हैं, तो स्मृति हमारी कहाँ रहनी चाहिए? बार बार ऊपर। लेकिन फिर भी इस संसार की स्मृतियां क्यों खींचती हैं? 63 जन्मों से है। और हाँ, क्योंकि हम देह से इतने बंध चुके हुए हैं, देह से हमारा इतना प्यार हो चुका हुआ है, दूसरों के आकर्षण तो छोड़ो लेकिन अपने ही देह से सबसे अधिक होता है। और कुछ अपनी आदतें होती हैं, कुछ ऐसे संस्कार होते हैं जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो उनसे भी मुक्त होकर जब हम अपने घर को याद करेंगे और उस घर में रहकर जितना समय रहेंगे अशरीरी अवस्था का अनुभव करेंगे या सीड स्टेज, तो भी आत्मा इस बॉडी से डिटैच होने का अनुभव करेगी। और जितना समय हम उस अवस्था का अनुभव कर लिया तो फिर शरीर से डिटैच होना बहुत आसान हो जाएगा, फिर इस संसार की समस्याएं परिस्थितियां हमको प्रभावित नहीं करेंगी। तो जैसे मौका मिला तुरंत आत्मा जैसे शरीर से निकल गई, मन बुद्धि से, बाबा कहते हैं बुद्धि की यात्रा है, तो एक सेकंड में। इसलिए बाबा कहते हैं सारे दिन में जितना भी समय मिलता है बीच बीच में एक सेकंड, 5 मिनट, 5-10 मिनट, 2 मिनट तुरंत शरीर से डिटैच हो जाओ, क्योंकि ये हमारा अंतिम पाठ है। इस पाठ में हम सबको पूरा पास होना है कि जैसे मौका मिले एक सेकंड बॉडी से डिटैच। अंत में बाबा ने कहा कि चलो वापस, तो तुरंत निकल जाए इस बॉडी से। तो लंबे समय तक हम अपने स्वदेश अर्थात स्वधाम में स्थित रहना है। दूसरा स्वधर्म, तीसरा के चौथा स्वधर्म। हमारा धर्म कौन सा है? आत्मा का धर्म क्या है? शांति है ना? तो आत्मा फिर अशांत कैसे हो सकती है? जैसे हमें अपने स्वधर्म की विस्मृति होती है, पर धर्म में चले जाते हैं या पर चिंतन, पर मत, पर दर्शन, दूसरे को देखने लग पड़ते हैं, तो हम जैसे पर धर्म के वश हो जाते हैं, माया के धर्म के वश हो जाते हैं, और फिर आत्मा अशांति में चली जाती है। और फिर वो आदत धीरे धीरे पड़ती है ना, तो फिर आंखों का रस, कान रस, वो बातचीत करने में मजा आता है क्योंकि आदत पुरानी पड़ी है, तो फिर हमें अपने स्वधर्म में स्थित होना बड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए इस पर भी विशेष अटेंशन रखने की जरूरत है कि लंबे समय तक हम अपने स्वधर्म को न भूलें, है ना? स्वधर्म में स्थित रहना है। तो स्वधर्म, स्वदेश, स्वमान और क्या बताया, तीन ही हुए। हाँ, परम शांति तो स्वदेश में मिल जाएगी ना। स्वलक्षण या स्वलक्ष्य को जिसको कहे कि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है, बाबा ने कहा, देवी देवता बनना या इस ब्राह्मण जीवन में कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना। तो अगर हमको ये भी स्मृति रहती है तो भी हम निर्लेप अवस्था की अनुभूति करेंगे, तो भी हमको इस संसार की परिस्थितियां प्रभावित नहीं करेंगी, कोई भी समस्या आएंगी उन समस्याओं से हम ऊपर रहेंगे। तो स्वलक्ष्य या स्वलक्षण हमें स्मृति में रहने चाहिए। और फिर स्वराज्य, एक तो स्वराज्य वाला स्वराज्य है, अगर हम स्वराज्य अधिकारी की स्थिति पर स्थिति में रहते हैं तो आत्मा जैसे इस बॉडी की मालिक है और एक कर्मेंद्रिया उसके कर्मचारी है। जब मालिक कुर्सी पर बैठा होता है या ऑफिसर कुर्सी पर बैठा होता है तो सारे कर्मचारी कंट्रोल में रहते हैं, जैसे ऑफिसर गायब हुआ तो सारे कर्मचारी आउट ऑफ कंट्रोल। उसी तरह से आत्मा की स्मृति रहती है कि मैं आत्मा व्यक्ति सिंहासन पर विराजमान हूं, तो सारी कर्मेंद्रिया जैसे कंट्रोल में है। जैसे हम विस्मृत होते हैं कि मैं आत्मा नहीं देह हूं, तो सारी कर्मेंद्रिया हलचल, और वहीं से फिर दुख की शुरुआत हो जाती है। तो हमें अपने स्वराज्य अधिकारी की स्थिति में भी स्थित रहना है। नेक्स्ट है, एक ये तो स्वराज्य अधिकारी, एक दूसरा स्वराज्य हमारा असली राज्य कौन सा है? सुखधाम, स्वर्ग, पैराडाइज, जन्नत, बहिष्ट। तो वो भी अगर हमें स्मृति में रहता है तो इस संसार की स्मृतियां नहीं खींचेगी, तो वो भी हमारे में देवता लक्षण प्रकट होने लगेंगे, जो हमारे अंदर देवत्व छिपा हुआ है वो जागृत होने लगेगा, हमारी चाल चलन में, हमारी व्यवहारिकता में परिवर्तन आने लगेगा, क्योंकि वो स्मृति आत्मा उसका चिंतन कर रही है। तो नेचुरली अब फिर हम एक निर्लेप, इस बॉडी में रहते हुए भी निर्लेप अवस्था का, इस संसार से निर्लेप रह सकते हैं, है ना? तो ये स्वराज्य, दूसरा स्वराज्य होगा। नेक्स्ट स्वचिंतन, स्वयं का चिंतन, मैं आत्मा, कौन सी आत्मा हूं, मुझे आत्मा का कर्तव्य क्या है, मैं इस संसार में किस लिए आई हूं, मैं कर्तव्यों के ऊपर खरा उतर रही हूँ, जो मुझ आत्मा पर बाबा की आश है उन आशाओं के अनुरूप हम खरे उतर रहे हैं, चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो स्वचिंतन, इसके बीच में फिर मनन चिंतन, विज्ञान के अनेक भिन्न भिन्न बिंदु आ सकते हैं, उसके ऊपर मनन चिंतन करके भी स्वचिंतन को बढ़ा सकते हैं। तो स्वचिंतन भी होना आवश्यक है। तो स्वचिंतन, फिर सुकर्म, अगर स्वचिंतन में रहेंगे तो भी हमारी निर्लेप अवस्था बनी रहेगी। फिर सुकर्म, सुकर्म अर्थात श्रेष्ठ कर्म, पुण्य कर्म। सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? सुख देना, और बाप का परिचय देना, और सुख देना, लेकिन मर्यादा पूर्वक सुख देना। अगर मर्यादाओं का उल्लंघन करके हम सुख देते तो वो फिर भारी बढ़ जाएगा। इसलिए सुख देना और बाप का परिचय देना, है ना, बाप का परिचय देना, बाप के साथ संबंध जुड़ाना, किसी के समय पर सहायता करना, माना यथार्थ रूप से। ये भी हमारे अनेक प्रकार के जो खाते हैं, जो आत्मा जब उस स्थिति में स्थित हो जाके सुकर्म करेगी, पुण्य कर्म करेगी, तो फिर भी आत्मा को पंख लग जाएंगे, आत्मा उड़ने लग पड़ेगी। नहीं तो माया ने, बाबा ने कहा ना, माया ने क्या कर दिया है, पंख काट दिए हैं। कौन कौन से पंख? ज्ञानियों के। ये जो सप्ताह बीत गया, इस सप्ताह में माया ने बहुत प्रहार किया, बाबा ने करवाया, हमने नहीं किया। बाबा ने मुरली में बहुत सारे पॉइंट से प्रहार किया। तो कौन कौन से माया के पॉइंट थे? माया क्या क्या करती है? माया गुस्सा मारती है, थप्पड़ मारती है, कच्चा खा जाती है, पछाड़ती है, फारकती दिला देती है, नाक काटती है, कान काटती है, और ऊपर से गिरा देती है, हड्डगुड तोड़ देती है, खड्डे में गिरा देती है, अलग अलग रूपों से आती है, और अपना बना लेती है, पछाड़ती है, और क्या करती है, बदला लेती है। हाँ, बदला लेती है। और बाबा भेजता माया को, बाबा ने कहा जाओ इनसे लड़ो। तो बाबा होगी माया की बेटी और हम बाबा के बच्चे, तो हम माया के क्या हो गए? भाई। और बेटी, हम बेटे आत्मा रूप में बच्चे हैं, तो आपस में भाई बहन हो गए। तो उससे हमको राखी बंधवानी चाहिए, उससे दोस्ती करनी चाहिए। तो माया के कितने रूप हैं अलग अलग तरीके से, है ना, ये भी हम चिंतन कर सकते हैं। माया किस किस रूप से हमें प्रभावित करती है? माया अजगर है, जो कच्चा खा जाती है, पकाती भी नहीं है। और जो कच्चा खाएगी तो क्या होगी? उसका पेट खराब हो जाएगा, और पेट खराब होगा तो क्या होगा? फिर हम बच जाएंगे। जी, माया का पेट खराब होगा ना, वही तो। तो माया के कितने सारे रूप हैं, तो ये हमको माया के रूपों को भी जानना आवश्यक है। माया के आकर्षण कितने प्रकार के हैं, माया किस किस रूप से प्रहार करती है, और कब कब करती है, और क्यों करती है, वो कैसे करती है, उसके पास कौन कौन से हथियार है, और कब करती है वो, अधिकतर माया प्रहार कब करती है? सवेरे से लेकर रात तक, बताओ कब कब माया आती है? सबसे पहले कहाँ आती है? सवेरे अमृत वेले आती है। किस रूप में आती है? नींद के रूप में आती है। क्या कहती है वो? सो जा। सो जा माया कुमारी, राजकुमारी, राजकुमारी दबाव बोले रात को, लेकिन वो सवेरे बोलती है ना, तो सवेरे वो प्रहार करती है। इसलिए बाबा ने कहा अगर अमृत वेले नींद आए तो क्या करो, आज की मुरली में था, आंखों में तेल लगा लो, अर्थात क्या, आंखों में तेल लगा लो अर्थात नींद को जितना, बाबा ने क्या कहा, अर्थात पुरुषार्थ करो। तो नहीं कि दूसरा तेल लगाने और वहां डिपार्टमेंट में पहुंच जाए कि आपको थोड़ा थोड़ा सरसों का तेल दे दो, तो वहां पहुंच जाए बोतली लेके। तो अर्थात पुरुषार्थ करो। और नींद क्यों आती है उसका भी हमको चिंतन करके उसके कारण खोजने हैं, है ना। या तो कहीं ना कहीं सारे दिन में हम, जो हमारा व्यर्थ समय जा रहा है, जो आत्मा के ऊपर बोझ ऑलरेडी एक तो पहले से अनेक जन्मों का, और आत्मा बोझिल होगी, और सवेरे भी फिर वही विचार चलेंगे, और विचार जो चलने चाहिए वो नहीं चल रहे हैं, बाबा का चिंतन नहीं चल रहा है, तो दूसरा चिंतन चलने से जैसे रस नहीं आता, फिर क्या अपने प्रति फिर घृणा भावना पैदा हो जाती है, फिर घृणा होती है पैदा, अनुभूति कुछ नहीं होगी तो क्या होगा, फिर नींद ही आएगी, फिर उसके बाद नींद भी होगी तो लास्ट में अमृत वेला फिर सुख का अनुभव नहीं होगा। इसलिए बड़े थोड़ा सा योग करें लेकिन शक्तिशाली, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा या पौना घंटा जितना भी करते हैं 1 घंटा, तो हमारा शक्तिशाली योग होना चाहिए ताकि जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। हमें स्वयं अनुभव होना चाहिए कि हमारी धीरे धीरे प्रगति हो रही है, और प्रगति हो रही है तो अभी रुक नहीं जाना है, उससे आगे कैसे बढ़ना है और कौन कौन सी हमारे में ऐसी खामियां हैं जिन खामियों के कारण हमारी प्रगति नहीं हो पा रही है, जिस पथ पर हम पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे कारण हैं जहां हमको सावधान रहने की जरूरत है, तो इस पर अटेंशन देने की जरूरत है। तो ये माया के अनेक प्रकार के रूप हैं जो हमारे सामने अनेक प्रकार की चुनौतियां पैदा कर देती हैं, हमें प्राप्तियों से वंचित कर देती है। मनोविकृतियां जो मन में अनेक प्रकार के बीमारियां विकार हैं, आज भी बाबा ने एक लाइन कही, कौन से विकार कब आते हैं, आज की मुरली में था विकार कब आते हैं, देव मन, अर्थात जब अहंकार आता तो फिर दूसरे विकार आ जाते हैं, लेकिन पुरुषार्थी बच्चे क्या करेंगे, और हाँ पुरुषार्थी बच्चे तूफान जितने भी आए लेकिन उनसे डरेंगे नहीं, वो पुरुषार्थ करते रहेंगे, तो तूफान तो बाबा ने कहा आएंगे लेकिन कर्म में नहीं आना है, तो ये कर्मों की गुह्य गति थी, उसमें बाबा ने हम सबको रियलाइज कराया कि जो बच्चे पुरुषार्थी बच्चे हैं कर्मों की कौन से गुह्य गति को जानते हैं, वो जानते हैं कि आत्मा के ऊपर पापों का बोझ बहुत चढ़ा हुआ है, आत्मा बिल्कुल मैली हो गई है, थोड़ा सा झटका लगेगा तो फट जाएंगे जैसे, है ना। और चार चीजें बाबा ने ज्ञान की दी आज, कौन कौन सी मुरली में चार चीजें ज्ञान की थी, नहीं ज्ञान से संबंधित है, एक मैं बताऊ जैसे ज्ञान अमृत है, और तीन और बताओ कौन सी है, हाँ एक एक ज्ञान की सोटी, वो तो रहेगी, वो तो बताया नहीं था धोबी घाट में जब, उस लकड़ी तो बताई नहीं आपने, बताया था, अच्छा ज्ञान की सोटी, और दो और कौन सी, ज्ञान सोटी ज्ञान अमृत और क्या बताया, ज्ञान वर्षा, एक और बताया कौन सी थी, ज्ञान गंगा, ये चार बातें थी आज। वैसे तो ज्ञान से बहुत सारी बातें हैं, ज्ञान तलवार भी है, ज्ञान खड़ग भी है, ज्ञान कस्तूरी भी है, ज्ञान संजीवनी बूटी भी है, ज्ञान दवाई भी है, ऐसे ज्ञान की बहुत सारी बातें हैं, है ना, तो वो भी हम चिंतन कर सकते हैं। और 7 संबंध थे बाबा के आज मुरली में, हैं कौन कौन से थे, एक तो बाबा बाप था, साजन कहां पर बताया था, किस संदर्भ में बताया था, नहीं कहां किस संदर्भ में साधन की बात की थी, बाबा ने कहा था जब कुमार कुमारी सगाई करते हैं तो उनका ध्यान अपने आप आकर्षित होता है, तो ऐसे हमारी सगाई साजन से हुई है, लेकिन कई बच्चे हैं जो साजन को फार गति दे देते हैं, तो साजन का संबंध था ये। और हाँ अविनाशी सर्जन है, जो क्या करते हैं, हम सब पेशेंट हैं तो हम सब की सर्जरी कर रहा है, वो आत्मा क्या हो गई है, मैली हो गई है, तो सवेरे सवेरे बाबा हमारी सर्जरी करता है, सारे दिन में भी करता है लेकिन सवेरे विशेष, सवेरे का टाइम आईसीयू वाला होता है ना, एकदम साइलेंस वाला होता है, तो हमारी सर्जरी होती है। और तो ये चौथा संबंध हुआ, अविनाशी सर्जन साजन बाप, तीन हुए, दो भी, हाँ एक दो भी हो गया, चार, अब तीन और कौन से, टीचर के रूप में बोला, कौन सी, हाँ अनेक प्रकार की पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ाई के बारे में टीचर भी था, और एक और था संबंध, एक और था नन्ना सा बच्चा, हाँ हम बच्चे हैं, ठीक है बाबा भी बच्चा है, ये माताएं तो कहती हैं, एक था बाबा समाचार सुनाते हैं, तो कौन ठहरा जर्नलिस्ट पत्रकार, तो कौन सा बाबा ने कहा था, नॉलेजफुल बाप तुम्हें मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं। तो बाप क्या ठहरा? जर्नलिस्ट, समाचार सुनाते हैं। तो ऐसे मुरली से ये सात संबंध थे बाबा के, और वो चार ज्ञान की बातें थी, और समय के ऊपर था कि अमृत वेले के ऊपर बाबा ने जो ज्यादा फोकस किया, क्योंकि देखेंगे हम ये जो समय है ये बहुत कीमती है ना। सारे दिन में कितना समय होता है? 24 घंटा कितने मिनट होते हैं, और सेकंड कितने होते हैं? 86,400 सेकंड होते हैं, 86,400 सेकंड होते हैं। तो रोज समय, रोज हमारे खाते में 86,400 रुपए मान लो जमा हो जाएं सवेरे सवेरे, और उनका फायदा तब है जब हमें वो सारे खर्चने हैं। अगर नहीं खर्चे तो वो खत्म हो जाएंगे, वो फिर हमारे शाम तक नहीं रहेंगे। टाइम निकल जाता तो हमारा थोड़ा रहता, वो तो बीत गया ना। अगर हम उसने टाइम, उस समय टाइम का सदुपयोग करते हैं तो हमें उसके फल की कुछ प्राप्ति होती है। अगर सदुपयोग नहीं करते तो क्या होते हैं? टाइम वेस्ट चला जाता है ना। ऐसे ही पैसा भी जो जमा हो, खर्च नहीं करेंगे तो क्या खुशी रहेगी? तो सारे दिन में जो समय मिलता है हमको 86,400 सेकंड, एक सेकंड में कितनी कमाई है? बाबा ने कहा कदमों में पद्मों की कमाई। संसार में जो लोग होते हैं कितनी कमाई करते हैं? जो बहुत साहूकार से साहूकार भी होगा तो ज्यादा 1 करोड़ दिन में कमाते होंगे, 2 करोड़ कमाते होंगे, है ना। लेकिन यहाँ हर कदम में पद्मों की कमाई, तो 86,400 हर कदम में पद्मों की कमाई, तो उसमें एक सेकंड में एक पद्म जोड़ लो तो पद्म कितना है? ऐसे 86,400 और पद्म जोड़ लो कितने होंगे, तो कितनी अनलिमिटेड कमाई है, कितनी पुण्य की पूंजी हम जमा कर सकते हैं। अर्थात समय का महत्व, ये समय कौन सा चल रहा है, इस समय को हम किस तरीके से यूज कर रहे हैं, है ना। समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो फिर अंत में पछताना पड़ेगा, फिर हमारे हाथ में क्या होगा। और जब तक अधिकतर हम समस्याओं से, अनेक प्रकार की समस्याओं से मुक्त हैं और परिस्थितियां सारी हमारे अनुकूल हैं और हम पुरुषार्थ कर सकते हैं, और हम नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा बाद में? फिर बाबा ने कहा अंत में रोना पड़ेगा, भयंकर पश्चाताप होगा। कौन से आंसू आएंगे? बाबा ने कहा खून के आंसू आएंगे, वो बाहर वालों को कम आएंगे, अंदर वालों हम सबको ज्यादा आएंगे, ब्राह्मणों को। क्यों? कि हमको तो भगवान मिला हुआ है, पता भी है। संसार में भी भगवान को याद करने के लिए कितना सारा त्याग तपस्या करते हैं, है ना, सवेरे से लेकर शाम तक, है ना। अनेक धर्म जो संसार में बड़ी बड़ी महान विभूतियां हुई हैं, उन्होंने भी अमृत वेले का बहुत सारा महत्व रखा है। अमृत वेले, जैसे गुरु नानक जी भी उस जपजी साहब में है कि अमृत वेले कौन से ऐसे विचार हों, कौन से ऐसे विचार किए जाएं, तो उसमें लिखा है अमृत वेले उठ के प्रभु के गुणों का चिंतन किया जाए, तो इससे बड़ा चिंतन कोई नहीं है। तो सारे दिन में उसकी खुशी रहेगी, और जो बच्चे अमृत वेले प्रभु चिंतन करते हैं वो जीवन की हर बाजी को जीत जाते हैं, और जो बच्चे अमृत वेले नहीं उठते जैसे वो मरे हुए हैं, अमृत छोड़ दो तो नहीं उठते तो जैसे वो मृत हैं। तो अमृत वेला का भी संसार में इतना महत्व है, क्योंकि हमारा फाउंडेशन है सारे दिन का। उस इसमें हम आत्मा को चार्ज नहीं करेंगे तो जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। तो इस चीज का ध्यान हमको रखना है कि हमारा टाइम वेस्ट नहीं, केवल नाम, केवल अमृत वेला है। फिर अगर हमारा, मान लो अमृत वेले, हमारा योग अगर शक्तिशाली नहीं है समझो, तो कम से कम जो हमारे दिन में है टाइम, अगर हम अमृत वेला अभी हमारा पावरफुल नहीं हो रहा है तो दिन में तो हम जागृत रहते ना, तो दिन के योग को बढ़ाना हमें धीरे धीरे। जब हमारा योग दिन का बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, आत्मा शक्तिशाली बनती जाएगी, तो फिर सवेरे उठने में भी आत्मा में बल आएगा, शक्ति आएगी, ताकत आएगी। बाबा ने तो उस दिन कहा कितने बजे उठे? 2 बजे उठो। और ब्रह्मा बाबा 93 एज तक भी 2 बजे उठे रहे, है ना। डॉक्टर ने कहा था बाबा को डायबिटीज थी, और तो डॉक्टर ने कहा कि जल्दी सो जाओ और अमृत वेले नहीं उठो, ऐसे डॉक्टर ने बाबा को बताया था। तो दीदी ने भी कहा था, बड़ी दीदी जी ने, कि बाबा डॉक्टर ने ऐसे कहा है, आपकी तबीयत खराब रहती है, डायबिटीज है, तो आप जल्दी सो जाओ और सवेरे नहीं उठना आपको। तो बाबा कहते मैं ऊपर वाले की सुनूं, सर्जन वाले, उस सर्जन की सुनूं या इस सर्जन की सुनूं? तो दीदी ने बड़ा जोर लगाया, लेकिन बाबा कहते ठीक है देखूंगा। अच्छा, तो फिर सवेरे अमृत वेला हुआ तो बाबा साहब के पीछे आके चुपके से बैठ गए। तो माना उस उम्र में भी देखो 2 बजे, तो जो सृष्टि के आदि पिता हैं उन्होंने इतना पुरुषार्थ किया है, तो हमको कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। तो कम से कम जो हमारे सारे दिन का समय जा रहा है वो तो कम से कम हमारे हाथ में है ना, जो समय हमारे हाथ में है उसको तो पहले हम अच्छी तरह से उसका सदुपयोग करें ना, उसका तो फायदा लेना सारे दिन में, सवेरे से लेकर रात्रि तक। शाम को योग का टाइम मिलता है, दिन में 10 मिनट बैठ जाओ, 5 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, जरूरी नहीं हमको 1-1 घंटा सीधा लंबा योग करना, शॉर्ट शॉर्ट थोड़े थोड़ा योग के छोटे छोटे गोल रखेंगे तो वो भी हमारा धीरे धीरे जमा होता जाएगा, आत्मा में बल भरेगा, शक्ति भरेगी, खुशी आएगी। और जब हम बाबा की श्रीमत के अनुसार चलते हैं तो खुशी अपने आप बढ़ती है। देखो जिस दिन अगर हम मुरली ध्यान से पढ़ी है, 10-15 पॉइंट बुद्धि में है, उसका चिंतन भी किया, उसका स्वरूप बनने की प्रैक्टिस भी, उस दिन हम अपनी अवस्था को देखें। और जिस दिन इन चीजों से हम दूरी बनाकर रखते हैं उस दिन क्या होता है, उस दिन खुशी गायब रहती है ऑटोमेटिकली। और अगर हमने कमाई करके दिन की अंत की है, दिन का अंत किया है, तो फिर सवेरे भी हमारी वैसी शुरुआत होती है। अटेंशन तो हमको खुद ही रखना पड़ेगा, हमारे लिए दूसरा कोई पुरुषार्थ करने वाला नहीं है, हमारा स्वयं का ही पुरुषार्थ हमारे साथ चलेगा, हमारे स्वयं के कर्म हमारे साथ चलेंगे, कोई किसी लिए कुछ करने, जैसे कहते हैं हम किसी के लिए योग तो करते हैं लेकिन कब तक करेंगे किसी के लिए योग भी? आत्मा अपने आप को पंख खुद ही नहीं लगाएगी, दूसरे के बल से कितना उड़ेगी वो, इसलिए जो करेगा सो पाएगा। सिद्धांत ही सिद्धांत के ऊपर हमको पूरा कायम रहना है, अपने पुरुषार्थ में कभी भी हमको ढीला नहीं होना है, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना, डिसाल्टेड नहीं होना है। तूफान बाबा ने कहा ना, तूफान आएंगे लेकिन घबराएंगे नहीं, वो जीवन में उतार चढ़ाव तो आते हैं लेकिन हर उतार चढ़ाव में निंदा स्तुति जय पराजय लाभ हानि सुख दुख में सब एक समान स्थिति वो हमको बना के रखनी है ना, क्योंकि बीज तो हमने बोए हुए अनेक जन्मों के, पता नहीं कौन से जन्मों के विकर्मों के जो बीज हैं कब अंकुरित हो जाए, है ना। जैसे हम रात को सोते हैं तो कई बारी तो अभी तो कम आते हैं लेकिन पहले ऐसे सभी को आते होंगे, कई ऐसे सपने होते हैं जिनका इस जीवन से कोई लेना देना नहीं है, वो कहां से आते हैं सपने? नहीं वो इस जीवन में हम लिए देखा ही नहीं कुछ ऐसा, फिर भी आते हो कहां से आते हैं? वो पिछले जन्मों के हैं, नहीं तो बिना हमने बीज ही नहीं बोया तो सपना क्यों आएगा फिर? तो अनेक जन्मों के किसी भी जन्म का बीज जो कभी भी अंकुरित हो सकता है, इतना सूक्ष्म है। इसलिए अपने पुरुषार्थ के प्रति हमको पीछे नहीं कदम हटाने हैं, हमेशा आगे बढ़ता रहना है ना। तो ये चीज थी कि किस पर चिंतन कर रहे थे, कहां से गाड़ी ट्रैक चेंज हो गया, अमृत वेला से। हाँ तो ये अमृत वेले का भी और सारे दिन में भी, ये पूरा संगम युग अमृत वेला, लेकिन विशेष अमृत वेले तो अटेंशन रख के हमें शक्तिशाली अमृत वेला बनाना है ना। और सारे दिन में बीच बीच में ट्रैफिक कंट्रोल होता है, शाम का योग होता है तो 10 मिनट योग। और सबसे बढ़िया है आजकल हमारा छूट गया है बाबा को पत्र लिखना, सबसे बढ़िया बाबा को पत्र लिखना है, अभी कम करते लेकिन शुरुआत में जब हम ज्ञान में चले थे तो हम डेली पत्र लिखते, हमें पता है पूरा दिन तो बिजी रहते थे सर्विस में, लेकिन जब रात को हम सोने से पहले आधा घंटा पत्र लिखने के बाद आधा घंटा योग करते थे तो वो जो आधा घंटा था ना एकदम बॉडी लेस्टेज होती थी। और हमने अनुभव किया है मधुबन में भले वातावरण है शक्तिशाली स्थिति है हो जाती है, लेकिन हमने अनुभव किया कि यहां से बाहर रहने वालों को बाबा ज्यादा मदद करता है, यहां मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा नहीं है कि वातावरण है सब कुछ है, मेहनत तो यहां भी करनी पड़ती है। अगर हम सारा दिन पर चिंतन प्रपंच में रहो शाम को बैठो योग में कुछ में हाथ नहीं आएगा, तो बाहर वालों के ऊपर तो बाबा की ज्यादा नजर रहती है। हाँ यहां अगर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं अच्छी तरह से, जितना 20 नाखूनों का जोर जितना हम कर सकते हैं उतना हम पुरुषार्थ कर रहे हैं और श्रीमत पर चल रहे हैं तो बाबा की मदद ही हम फिर अनुभव होती है, नहीं तो ऐसे थोड़ा नहीं होगी। तो अंदर की सच्चाई सफाई जितना बाबा के प्रति होगी, बाबा को हम प्रेम से पत्र लिखेंगे, अपना सच्चा चार्ट देंगे, कमी कमजोरियों को मिटाने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ने की हमारे में जो हिम्मत है या विचार है जो शुद्ध संकल्प है उनको हम अपने व्यवहारिकता में लाएंगे, तो नेचुरली बाबा की शतर छाया हमारे ऊपर काम करती रहेगी, अनुभूति होती रहेगी।
और ना चाहते भी मान लो जब कोई समस्या आती है तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई हमें क्लिक होगा वो कि इस समस्या का समाधान कैसे करना है। वो परिस्थिति के समय बाबा शत्रशाया के रूप में या किसी न किसी रूप में हमारे सामने कोई ना कोई विचार प्रस्तुत कर देगा कि इस समस्या से ऐसे समाधान करना है। नहीं तो अधिकतर देखा दूसरों से जो हम समस्या का समाधान पूछते हैं वो वास्तव में सदाकाल का समाधान नहीं होता है। जो हमारी समस्या है उनका समाधान हम खुद भी जानते हैं लेकिन करते नहीं है। दूसरों से बोले ठीक है पूछना तो अच्छी बात है लेकिन करना तो खुद को पड़े ना। जो भी मेरी कमी कमजोरी है उसको मुझे पता है कि मुझे कैसे खत्म करना है और मैं पूछ रहा हूं दूसरों से लेकिन खुद करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं उस कमजोरी को समाप्त करने का प्रयास। तो पता तो खुद को है ना। तो अगर हम कमजोरी को समाप्त करने का अपने स्तर पर ही बाबा की मूल्यों के आधार पर ज्ञान के आधार पर चिंतन के आधार पर उन कमजोरियों को समाप्त करने का प्रयास करते हैं तो बाबा को टचिंग कराता समय पर। हमने बहुत बार देखा अगर दिन में कोई ना कोई छोटी मोटी गलती होती है कहीं ना कहीं भूल जाते हैं तो तुरंत योग में क्लिक हो जाएगा और फिर उसी दिन हम उसको ठीक कर लेते हैं तो एक अलग से खुशी मिलती है। तो अनुभव होता है कि जैसे बाबा ने वो टच कराया है ना। और नहीं करेंगे तो फिर हमारी दिनचर्या वैसी बनती रहेगी। फिर तो खाली बाहर से हम ब्राह्मण लगेंगे लेकिन आंतरिक ब्राह्मण के जो नियम मर्यादाएं हैं उनका उनके ऊपर चलना वो फिर हमारे जीवन में अमल में नहीं आएगा केवल बाहरी दिखावा मात्र ही रहेगा। तो हमको अपने नियम मर्यादाओं पर भी खरा उतरना है। तो ये चीज थी कि अमृत वेले से रात्रि तक जो भी समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं से न घबराते हुए हमको समस्याओं के बजाय अपने योग पर ज्यादा ध्यान देना है ज्ञान के चिंतन पर ध्यान देना है ना। सेवा हमारी जो सेवाएं हैं वो सेवा खाली सेवा नहीं है वो सेवा भी योगमय सेवा हो जाए वो सेवा का चार्ट भी हमारा योग में जमा हो जाए। देखो जब हम सेवा करते हैं अगर हमें स्मृति है कि हम बाबा की सेवा कर रहे हैं तो बाबा की सेवा करने से बाबा हमारी बुद्धि में रहेगा बाबा के गुण ज्ञान शक्ति हमारी बुद्धि में रहेंगे तो भी आत्मनिर्लेप अवस्था का अनुभव करेगी क्योंकि हमारा उस समय बॉडी के ऊपर ध्यान नहीं है हमारे ज्ञान के चिंतन में है बाबा की सेवा में निमित्त भाव से कर रहे हैं हम निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं न्यारे प्यारे होकर कर रहे हैं बाबा की सेवा समझ कर रहे हैं तो भी इस बॉडी से डिटैच होने का अनुभव कर्म करते हुए हम अशरीर अवस्था का अनुभव केवल कर सकते हैं अगर हमारा अपने ऊपर अटेंशन है तो। हाँ जी अंदर का ब्राह्मण आंतरिक हाँ तो जो सूक्ष्म मर्यादाएं हैं मन की मर्यादा एक तो तन की मर्यादा ठीक है सफेद कपड़े पहन लिए बैज लगा दिया ब्रह्मा भोजन खा लिया ये तो सारी बाहर दिखाई दे रही हैं लेकिन सूक्ष्म हमारा मन का भोजन कैसा है हमारी आंखों की दृष्टि कैसी है ना। हम अंदर ही अंदर कौन से बोल रहे हैं अपने आप से सेल्फ टॉक अपने आप से कौन सी बातचीत कर रहे हैं किसी को देख के उसी के बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं अंदर ही अंदर में बात कर रहा हूं अंदर के जो आंतरिक हमारी पुरुषार्थ है वो तो बाहर नहीं ना दिखाई दे रहा है। मैं आपको देख के क्या सोच रहा हूं आपको क्या पता चल रहा है तो वो है अंदर के ब्राह्मण एक है बाहरी ब्राह्मण एक अंदर के ब्राह्मण। तो हम अंदर से कितने सच्चे रूप से बने हुए है ना हमारी आत्मिक स्मृति है या दैहिक स्मृति है वो अभी देखने थोड़ा पता चल रहा है वो तो हम खुद ही जानते हैं ना सब अपने अपने स्तर पर जानते हैं। तो जो सूक्ष्म है कि मन से हम कौन कौन सा भोजन स्वीकार करें बाबा ने कहा है कि बाप को शुद्ध संकल्पों का भोग स्वीकार कराओ। एक तो बाहरी भोग लगा दिया हमने अच्छा सवेरे साफ सुथरा करके नहा धो के बाबा को बहुत अच्छे फल वगैरह रख के भोग लगा दिया और जैसे भोग लगाने के बाद तो हमारी सारी व्यवहारिकता चेंज होगी मुख से जो नहीं निकलना चाहिए वो भी निकलता है और हम देखते हैं होता है ये तो अंदर से बदलाव कहां हुआ। अगर हमने सच्चे दिल से सचमुच भगवान को भोग लगाया है तो हमारे संकल्प तो वैसे होने चाहिए ना विचार हमारे ऐसे हैं व्यवहारिकता हमारी ऐसी है और मैं भोग लगा रहा हूं कहां परिवर्तन होगा वो भले वो भोजन की शुद्धि थोड़ी देर असर करेगी लेकिन हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे हमारे व्यवहार परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए शुद्ध संकल्पों का भोजन शुद्ध संकल्पों की गंगा हमारे में निरंतर बहती है उसमें हमें निरंतर स्नान करते रहना है। श्रेष्ठ संकल्प शुद्ध संकल्प दृष्टि है तो किस रूप से देखना है बाबा ने कहा है हर बहन या माता को किस रूप से देखो शिव शक्ति के रूप में देखो। तो क्या हमारी दृष्टिवृत्ति वैसी है हर बहन माता भाई को कैसे देखे महावीर के रूप में देखे, तो क्या हमारी दृष्टिवृत्ति वैसी है? तो ये धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं है कि हम पूरा बदल गए हैं, प्रयास कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अटेंशन तो रखना पड़ेगा ना। जो बाबा ने कहा पेचदार और महीन बातें हैं वो तुम बच्चे जानते हो, तो जो आंतरिक पुरुषार्थ है वो तो हमारा बाहर से थोड़ा ना दिखाई देगा, लेकिन आंतरिक पुरुषार्थ का परिणाम हमारे बदलाव में, हमारी व्यवहारिकता में, हमारे चलन में और नेचुरल रूप में दिखाई देगा। अगर वो नहीं दिखाई दे रहा है तो जैसे बाबा ने आज की मुरली में कहा ना कि अजामिल जैसे हैं, मना अनेक जन्मों का बोझ, कौन सा एक सेंटेंस था जो अगर हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है तो कई जन्मों के पापों का बोझ आत्मा के ऊपर है। हाँ, अवगुण है, है अपने आप से पूछना है कि हमारे में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ये जो बोझ है हमारे में कई जन्मों का बोझ ऊपर है। अगर हम ज्ञान भी सुन रहे हैं, मुरली चिंतन भी कर रहे हैं और योग भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, फिर भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। हम श्रीमत बिल्कुल चल रहे हैं लेकिन फिर भी परिवर्तन नहीं हो तो क्या होगा? तो पहले के जन्मों का हिसाब किताब है। इस जन्म का भले वो कम है, ठीक हो रहा है, लेकिन सारा कुछ श्रीमत पर चलने के बाद भी अगर कहीं ना कहीं विघ्न आ रहे हैं तो उनसे भी हमको घबराना नहीं है। ऐसा नहीं सोचना कि हम श्रीमत पर तो ठीक चल रहे हैं फिर भी बाबा साथ नहीं दे रहा है। बाबा तो साथ दे रहा है लेकिन पिछले जन्मों के किसी भी जन्म का हिसाब किताब आत्मा के ऊपर है, तो हमको तो कम से कम उसमें और ही खुशी होनी चाहिए कि हमको पता तो चल गया ना कि बीमारी मेरे में अभी भी है। इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी हमारा परिवर्तन नहीं हो रहा है तो भी हमको डिसहार्टेड नहीं होना, तो भी खुश होना है कि हमको पता चल गया कि अभी हमको और पुरुषार्थ करना है। सूक्ष्म रूप से जो बताया ना पेचदारों महीन बातें क्या है, सब कुछ निर्विघ्न चल रहा है लेकिन फिर भी सामने से कोई ना कोई परिस्थिति आ जाती है अचानक, तो पिछले जन्मों किसी भी जन्म का हो सकता है, तो उनसे घबराने की जरूरत नहीं है, पुरुषार्थ और करो। हाँ, हाँ परिस्थितियां मजबूत बनाने कहते हैं, मजबूर नहीं बनना है, मजदूर नहीं बनना है, मजबूत बनना है। परिस्थितियों से घबराना नहीं है, परिस्थितियों से पाठ पढ़ के उनसे कुछ सीख के उनके आगे बढ़ना है। परिस्थितियां जैसे हमारी सखी है, हमारी मित्र है, वो हमें आगे बढ़ानी है, वो खेल है, लेकिन वो खेल तब लगेगी जब मन की स्थिति मजबूत होगी, है ना। जैसे जो स्कूल में बच्चे होते हैं जितना मर्जी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो अगर उसको मेथड पता है तो वो सारे क्वेश्चन अपने आप हल कर लेगा, अगर मेथड ही पता नहीं है तो दो घंटे के लिए दो साल बैठे वो पास ही नहीं होगा। इसी तरह से इस ज्ञान मार्ग में भी अगर हमें योग लगाने का मेथड पता नहीं है, ज्ञान चिंतन का मेथड पता नहीं है, तो हमारा जीवन वहीं का वहीं रहेगा, परिवर्तन नहीं होगा। जैसे वही क्लास उसी क्लास में और उसी परीक्षा में बैठे हुए हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो अगर हमारे जीवन में आ रहे हैं विघ्न, परिस्थितियां आ रही हैं, बोझ है और हमको पता चल रहा है कि हम सब कुछ करते हुए भी ये है आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो उसमें दुखी होने की बात नहीं है, कोई मन छोटा करने की बात नहीं है, उदास होने की बात नहीं है, आगे बढ़ो बस कर तो रहे ना। इतना तो हम सबको पता चल गया ना ये भी चीजें हैं, तो इसमें हमको पांव खींच पीन से नहीं खींचने, और बाबा ने कहे तो अंत तक आते रहेंगे। और वो पता नहीं है, वो थोड़ा सा ही होगा उस समय जिसको हम समझ के बैठे हैं, हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं और ये चीज आ गई, और हो सकता है वो एक ही दिन के लिए हो और हम उसको अनेक दिन के लिए पकड़ के बैठ गए, और एक ही दिन के लिए हमने अगर अच्छा पुरुषार्थ कर लिया और उससे मुक्त हो जाएंगे, और एक ही दिन के लिए उसको छोड़ के बैठ गए तो आगे का फ्यूचर भी हमारा खराब हो गया। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हमें पुरुषार्थ में रुकना नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा ना पुरुषार्थी बच्चे, अच्छे बच्चे रात को जाग पर भी आत्मा को धुलाई करते हैं, आत्मा की धुलाई करनी है, धुलाई करनी है, ठीक है। और कौन से पॉइंट थे आज की मुरली में, वरदान स्लोगन क्या था आज का? तो क्या हमारी सबके प्रति शुभ भावना रहती है, सभी के प्रति रहती है कोई पहले अपने प्रति रहती है, हाँ अपने प्रति भी रहती है, अपने प्रति शुभ भावना रहे उसका क्या परिणाम, मन क्या पहचान है कि हम अपने प्रति शुभ भावना रख रहे हैं, खुद से खुद प्यार करते हैं, अपने ऊपर घृणा नहीं आएगी, प्रसन्नता रहती है, प्रसन्न रहते हैं और दूसरों को भी करते हैं, हाँ। तो और क्या क्या था मुरली में, तो मुरली की जो ना अनेक प्रकार की बहुत सारी बातें होती हैं, और ये गाड़ी ना पटड़ी पर धीरे धीरे आती है, ऐसे नहीं इसको सोचना कि एक दिन में सारे चिक जाएंगे, ऐसा नहीं है। लंबे समय से आत्मा जब धीरे धीरे शुद्ध बनती जाएगी, पवित्र बनती जाएगी, तो पवित्र बुद्धि में ही शेरनी का बाबा ने कहा ना दूध ठहरता है। ज्ञान के रत्न इतने इतने वैल्यूएबल हैं, इतने परम पवित्र हैं, तो वो पवित्र जो अमृत है वो हमारी इस पवित्र पात्र में तभी ठहरेगा जब हम लंबे समय से उसको शुद्ध करने का प्रयास करते रहेंगे, है ना। तो इन चीजों के ऊपर भी ध्यान रखना। और क्या कहा? हाँ, एक नष्ट मोह की बात थी, है ना। नष्ट मोह बनना है, नष्ट मोह जो सगाई वाली बात आ गई ना, कुमार कुमारी सगाई करते हैं तो उनका मोह जो है ना दूसरों के प्रति ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, आपस में उनका संबंध जुट जाता है। तो उसी तरह से बाबा से हमारा संबंध जुटता है तो दूसरों से हमारा भी मोह धीरे धीरे खत्म होता जाता है। जितना हम पढ़ाई पर, अगर बाबा ने परसों कहा था ना, कल की मुरली में था, अगर पढ़ाई पर ध्यान नहीं करते तो जैसे मन शैतानी काम करता है, बराबर? हाँ बराबर है। तो कल की मुरली वो अपना फाइनल सत्यापन तो कराना पड़ेगा ना माता जी से, क्योंकि माता जी को सब पता होता है। तो मन शैतानी काम करता है अगर पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देते हैं तो। और क्या था? बहुत हो गया। संतुष्ट नहीं होने का, बुद्धि को चलाना है ना। धोबी काट के बहुत सारी बातें, आत्मा कितनी मैली हो गई है, सटका मारेंगे तो फट जाएगी, अच्छा वो फिर नहीं सुधरते तो बाबा सोचते इनकी तकदीर है, क्या करें फिर, है ना। तो ये तकदीर ये समझ के नहीं बैठ जाना। तकदीर के बारे में बाबा ने 3 दिन पहले एक मुरली में एक प्रश्न में बताया था, पुरुषार्थी बच्चे, 2 प्रकार के पुरुषार्थी बच्चे, एक थे सतो प्रधान पुरुषार्थी, दूसरे थे तमो प्रधान पुरुषार्थी। जो सतो प्रधान पुरुषार्थी है वो क्या करते हैं और तमो प्रधान पुरुषार्थी वो क्या करते हैं? जो सतो प्रधान पुरुषार्थी है वो प्रतिज्ञा कर बाप से पूरा बरसा लेते हैं, अधिकारी बच्चे बनते हैं। और जो तमो प्रधान पुरुषार्थी है वो क्या सोचते हैं? जो होगा देखा जाएगा, बड़ी हिम्मत वाले हैं वो भी। वो जो तकदीर में होगा देखा जाएगा, है ना। दास दासी का पद पाते हैं, प्रजा में चले जाते हैं, हाँ वो भी अच्छा है। कोई टेंशन ही नहीं, वहां जाके यही तो कहने हैं बस, महाराज महारानी आ रहे हैं और जा रहे हैं, दो ही तो लफ्ज बोल रहे हैं, करना क्या उधर। इतना सारा पुरुषार्थ करने की जरूरत क्या है, वहां दरवाजे पर खड़े होके महाराज कुमार आ रहे हैं और जा रहे हैं, बस इतने बोल रहे हैं, कोई तकलीफ तो है नहीं, सुखी सुखे वहां भी, तो इतना पुरुषार्थ करने की जरूरत क्या है फिर। अच्छा, ये पुरुषार्थ हम क्यों करते हैं? हमको पता है नहीं, हाँ वो तो बात ठीक है, हमको पता है कि भविष्य में हमारा पद फिक्स है, फिर भी हम पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? हमको पता है भविष्य में हमारा पद फिक्स है, जो कल पहले वही तो मिलेगा, तो फिर भी क्यों कर रहे हैं पुरुषार्थ, बताओ। हाँ, क्योंकि ये पुरुषार्थ भी फिक्स है हमारा, ये जो कर रहे हैं भी फिक्स ही है, इसलिए वो पद भी फिक्स है। हाँ, रह ही नहीं सकते, आप सो के दिखाओ नींद नहीं आएगी, जैसे राजू भाई हैं, अब ये इनके क्लास के बिना रह ही नहीं सकते, उनकी साधना देखने में इतना बड़ा थाला लेके चलो आप, देखो। ओम शांति।